जैसे ही उस लड़की ने आस्तिक के चेहरे पर अपना रुमाल रखा, आस्तिक और अरुणिमा की नज़रें एक दूसरे से टकरा गईं और वे दोनों एक दूसरे को देखने लगे। वहां बैठे सभी लोगों की निगाहें आस्तिक पर ही थीं, लेकिन सिर्फ आस्तिक था जिसकी निगाहें अरुणिमा पर थीं। उसने अपना हाथ उठाया और उस लड़की के हाथों को अपने चेहरे से हटाते हुए कहा, मैं ठीक हूँ रूबी। निशांत अरुणिमा के पास आते हुए बोला, चलो अरुणिमा, मैं तुम्हें घर छोड़ देता। अब तक सारे बिजनेस पार्टनर वहां इकट्ठा हो गए थे, यहां तक कि साकेत भी अरुणिमा के पास आया और उसने निशांत से कहा, इट्स ओके निशांत, मैं अरुणिमा को घर छोड़ देता हूँ। मिस्टर जोएल माहौल की नज़ाकत को समझते हुए सबको देखकर कहते हैं, सॉरी जेंटलमैन, मुझे नहीं लगता है कि आज की मीटिंग होनी पॉसिबल है। आप देख ही सकते हैं कि मीटिंग शुरू हुई नहीं कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ गईं। पहले तो सारे बिजनेस पार्टनर ही टाइम पर नहीं आ पाए, उसके बाद मिस्टर सूर्य मल्होत्रा अचानक कहीं गायब हो गए, मिस अरुणिमा की तबीयत खराब हो गई और अब मेरे बिजनेस पार्टनर मिस्टर आस्तिक को चोट भी लग गई है। तो मुझे लगता है कि आज की मीटिंग कैंसिल कर देनी चाहिए। मैं आपको दूसरी मीटिंग डेट जल्दी मेल कर दूंगा। सब लोग मिस्टर जोएल की बात से सहमत हो गए और वहां से एक एक करके जाने लगे, यहां तक कि निशांत भी वहां से चला गया क्योंकि अरुणिमा को साकेत घर लेकर जा रहा था। अरुणिमा अब भी हैरानी से रूबी को देख रही थी और रूबी की नज़रें लगातार आस्तिक पर ही थीं। वो आस्तिक के बाजू में अपना हाथ फंसाकर खड़ी थी और ये देखकर अरुणिमा वहां ज्यादा देर खुद को बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने चुपचाप अपना चेहरा दूसरी तरफ किया और आस्तिक को क्रॉस करते हुए वहां से निकल गई, जैसे कि वो उसे जानती ही नहीं थी। जैसे ही वो नीचे पार्किंग में गई, साकेत ने उसके लिए गाड़ी का दरवाजा खोला और वो खुद गाड़ी चलाने लगा। वो आस्तिक को जानता था, यहां तक कि आस्तिक और अरुणिमा के डिवोर्स के बारे में भी उसे पता था। उसने ड्राइव करते हुए कहा, अरुणिमा, ये आस्तिक रायचंद है ना तुम्हारा एक्स हस्बैंड? अरुणिमा ने कोई जवाब नहीं दिया और लगातार वो खिड़की के बाहर भीगी हुई सड़कों को ही देख रही थी। उसकी नज़र के सामने आज का पूरा वाक्य आ गया था। अगर आस्तिक सही वक्त पर नहीं आया होता तो सूर्य उसके साथ कुछ भी कर सकता था, और वही आस्तिक को किसी और लड़की के साथ देखकर अरुणिमा के दिल में एक दर्द का एहसास होता। आस्तिक अपनी जिंदगी में आगे निकल गया, इसीलिए शायद उसने अरुणिमा से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश नहीं की। अरुणिमा एक दर्द के साथ अपनी आँखें बंद कर लेती है। उसे आस्तिक के आखिरी शब्द याद आ रहे थे, मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा, आखिरी पल तक इंतजार करूंगा। लेकिन उसी के बाद अरुणिमा के चेहरे पर एक व्यंग भरी मुस्कान आ गई और वो अपने मन में सोचने लगी, वाह आस्तिक रायचंद, बातें तो बहुत बड़े बड़े किए थे, मेरे इंतजार करोगे, सारी जिंदगी इंतजार करोगे, कहां गया तुम्हारा वो वादा? यहां तो तुमसे एक साल भी इंतजार नहीं हुआ, सारी जिंदगी क्या खाक इंतजार करते मेरे लिए? तुमने मेरा कोई इंतजार नहीं किया, तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए, तुमने किसी और के साथ रिश्ता कायम कर लिया, तभी तो तुमने मुझसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश नहीं की और ना ही कभी ये जानने की कोशिश की कि मैं क्या हाल में हूँ, कैसी हूँ और तुमसे दूर कैसे रह रही हूँ। अरुणिमा ये सब अपने दिमाग में सोच जा रही थी। उसका घर आ गया लेकिन उसे इस बात का पता भी नहीं चला। साकेत ने जब उसे बताया कि वो घर पहुंच गए हैं, तब वो गाड़ी से बाहर निकली। साकेत को थैंक यू बोलकर वो घर के अंदर चली गई। साकेत हैरान हो गया, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद अरुणिमा थोड़ा वक्त अकेले रहेगी तो ठीक हो जाएगी, वो भी अपने घर चला गया। अरुणिमा अपने लिविंग रूम में बैठी हुई थी, उसने कपड़े बदल लिए थे और अब वो घर के सिंपल कपड़ों में थी। शाम होने को आ रही थी, इस बीच दो बार बारिश होकर रुक भी गई थी, लेकिन अरुणिमा के अंदर जो तूफान चल रहा था उसका क्या, उसने ना तो लंच किया और ना ही शाम की चाय पी, वो चुपचाप बस लिविंग हॉल में बैठी हुई थी। उसके फ़ोन में न जाने कितने कॉल और कितने मैसेज आए, पर उसने किसी का जवाब नहीं दिया, उसके दिमाग में सिर्फ आस्तिक की बातें ही चल रही थीं। शाम होते होते सारे नौकर अपने सर्विस क्वार्टर में चले गए थे। अरुणिमा अकेले अपने मेंशन में थी और अपने विचारों में खोई हुई थी कि तभी डोरबेल बजी। दरवाजे की आवाज़ से उसका ध्यान टूटा, इतनी रात को कौन हो सकता है, लेकिन घर में कोई सर्वेंट मौजूद नहीं था इसलिए अरुणिमा को खुद ही उठकर दरवाज़ा खोलना पड़ा। लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला उसकी आँखें एकदम बड़ी हो गईं, सामने आस्तिक खड़ा था। उसे देखकर अरुणिमा को यकीन ही नहीं हुआ कि आस्तिक उसके सामने खड़ा है। आस्तिक का चेहरा अभी भी सामान्य था और उसके चेहरे पर जो चोट लगी थी उस पर बैंडेज लग चुकी थी। कैसी हो, आस्तिक ने बहुत सरल तरीके से उसे सवाल किया, लेकिन अरुणिमा दरवाजे के दोनों तरफ अपना हाथ रखकर ऐसे खड़ी थी जैसे कि वो पत्थर की मूर्ति बन गई हो। उसने आस्तिक के सवाल का जवाब ही नहीं दिया, पहले वो ये यकीन कर ले कि आस्तिक उसके सामने ही खड़ा है। कैसी हो जान? जान, हाँ आस्तिक उसे यही तो कहता था, वो उसकी जान थी इसीलिए वो उसे जान कहा करता था। ये सुनकर अरुणिमा एकदम से होश में आई कि आस्तिक उसे जान कह रहा है, अरुणिमा के पुराने प्यार भरे नाम से उसे पुकार रहा है। पूरे एक साल बाद उसके कानों में ये शब्द पड़ा था और उसके हाथ पैर एकदम से कांप गए। वो अचानक से चौंक गई और अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहा, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? देखने आया था कि पिछले एक साल में तुमने मेरे बिना क्या क्या हासिल किया है, आस्तिक तुरंत जवाब देता है, तो अरुणिमा उसे घूर कर देखती है। आस्तिक के चेहरे पर तिरछी मुस्कान थी और वो हल्का सा अरुणिमा के ऊपर झुकते हुए कहता है, तुम्हारे यहाँ दरवाजे पर खड़े इंसान को अंदर बुलाने का रिवाज नहीं है क्या? थोड़ी तो तमीज़ दिखाओ, आखिरकार रिश्ता है हमारा। अरुणिमा के दोनों हाथ दरवाजे से अपने आप नीचे हो गए और वो एक तरफ होते हुए कहती है, किस रिश्ते की बात कर रहे हो? आस्तिक आराम से अंदर आता है और पूरे घर को निहारने लगता है। उसने अरुणिमा का सवाल तो सुना लेकिन उसका जवाब देना जरूरी नहीं समझा, बल्कि उसने सवाल बदलते हुए कहा, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? नजर नहीं आ रहे हैं। डैड रिटायर हो गए हैं और अब वे अपनी रिटायरमेंट को एंजॉय करने बाली गई हैं, अरुणिमा ने कहा, तो आस्तिक हाँ में सर हिलाते हुए बोला, चलो अच्छी बात है, कोई तो अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहा है। अरुणिमा ने तुरंत आस्तिक को व्यंग भरे शब्दों से कहा, हाँ हर कोई अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया है, तुम भी तो आगे बढ़ गए हो। क्या नाम था उस लड़की का? हाँ रूबी, उसके साथ अच्छी लगती है तुम्हारे साथ।